ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीं नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चार पांच नाम थे, कोई उनको वंशी बुलाते थे, कोई उनको वदन बुलाते थे, कोई वंशी वदानंद बुलाते थे, उनके अलग अलग नाम थे। और ये चट्टोपाध्याय फैमिली में प्रकट हुए थे बंगाल में। ये उस जनरेशन में हुए जब चैतन्य महाप्रभु धरती पे थे, जस्ट कुछ समय बाद, चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन, कल पूर्णिमा थी चैत्र महीने की, और श्रीकार चट्टोपाध्याय उनके पिताजी का नाम था, सॉरी उनके ग्रेट उनके ग्रैंडफादर का नाम था, श्रीकार के पुत्र युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के पुत्र माधव, श्रीहरि और श्री कृष्ण थे, और उनके पुत्र के रूप में वंशी वदानंद का जन्म हुआ। ये जो स्थान जहाँ पर प्रकट हुए, ये कुलिया के पास में है। आपको याद होगा जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन की ओर जाते हैं, तो वो कुलिया नाम के पास में जगह में जाते हैं, जहाँ पर देवानंद पंडित का आश्रम था, अपराध भंजन भूमि, ये हर्ड अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पर श्रीवास ठाकुर गोपाल चापल के अपराध को माफ़ किया गया था। तो वहीं पर वंशी वदानंद का जन्म हुआ था। इस भूमि को अपराध भंजन भूमि कहते हैं। और इनके माता का नाम चंद्रकला देवी था, और ये कृष्ण के बंसी के अवतार माने जाते हैं, इज इनकार्नेशन ऑफ द फ्लूट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इसलिए बंसी वदानंद कहा गया। और इनफैक्ट जब बंसी वदानंद प्रभु का जन्म हुआ, तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे उनके घर में जब उनका जन्म हुआ, साथ में अद्वैत आचार्य भी थे। वेरी ऑस्पिशियस प्लेस भी ऑस्पिशियस, और भगवान का प्रकट होना भी ऑस्पिशियस। और जिनके पिता, जिनका नाम माधव चट्टोपाध्याय था, वो महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे। दसोस वी रीडिंग अबाउट बंसी वदानंद लाइफ इन ब्रीफ। सो बंसी वदानंद प्रभु जो हैं, ये बाद में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके कटवा चले जाते हैं और फिर वहाँ से फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो उसके बाद वो जगन्नाथ मिश्र के घर में ही रहते हैं, और विष्णुप्रिया देवी और शशि देवी की सेवा करते हैं। दो वैष्णव बहुत विशेष हैं गौड़ीय परंपरा में, जो महाप्रभु के संन्यास के बाद छिपकर सेवा करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं आता, वो शची देवी और विष्णुप्रिया को मदद करते हैं। वो हैं ईशान ठाकुर और वंशी वदानंद ठाकुर। ये महाप्रभु के संन्यास के बाद उनके घर में रहकर उनकी सेवा करते हैं। एक बार विष्णुप्रिया देवी विरह में ऐसा सोच रहे थे कि अब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है तो मुझे अपने प्राण बनाए रखने का कोई लाभ नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड गौरंग, भगवान गौरंग से विरह में हम शरीर को कैसे बनाए रखें। तो दोनों ही विष्णुप्रिया देवी और वंशी वदानंद वो सोच रहे थे कि हम ऐसे कुछ कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पियेंगे नहीं। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए पर्सनली योगपीठ में और उन्होंने आदेश दिया कि आप इस तरह से व्यवहार मत करिए। अगर आप मेरे से विरह बहुत अनुभव कर रहे हैं तो मेरी ड्यूटी की सेवा करिए। आपको मालूम है वो कहानी, जो एक स्पेशल ड्यूटी है जिसकी सेवा विष्णुप्रिया करते थे, भगवान गौरंग इस तरह से हाथ बहुत ही उदार भाव में सबको कृपा दिखा रहे हैं। सो द ड्यूटी वॉज सर्व्ड बाय विष्णुप्रिया देवी। फिर बाद में विष्णुप्रिया देवी जब 96 वर्ष तक वहाँ पे रहते हैं, 96 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, अब आपने विष्णुप्रिया देवी धरती छोड़कर वापस भगवान की लीलाओं में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, तो तब बंसी बदानंद प्रभु ये डीटी को मायापुर से कुलिया में लेकर आते हैं। इसलिए अभी ये मूर्ति जो है कुलिया में पाई जाती है, आपने देखा होगा हम लोग संकीर्तन करते हुए जाते हैं, मार्केट के बीच में एक बहुत सुंदर मंदिर है, इसको धामेश्वर महाप्रभु कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये जो विग्रह है इसके बेस पर नीचे वंशी वदानंद ऐसे नाम कार्व किया हुआ है। हमने तो इतने ध्यान से देखा नहीं लेकिन यहाँ पर बताया गया ऐसे। वंशी वदानंद गृहस्थ डिवोटी थे और जब उनके वंश में रामचंद्र गोस्वामी आए तो रामचंद्र गोस्वामी उनके पुत्र थे और जानवा ठाकुरानी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी हैं, एक बार वो भ्रमण करते करते वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र को स्वीकार करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनके पुत्र को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उनको खरदा ले गए। खरदा नाम है आपको स्थान सुना आप लोगों ने, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु विवाह के बाद रहे, खरदा बोलते हैं स्थान को, ये पानीहाटी के पास में है। तो खरदा में ही रहे और वहाँ पर उन्होंने रामचंद्र गोस्वामी को ज्ञान दिया। वंशी वदानंद का एक और विशेष गुण था कि वो बहुत अच्छे कवि थे और उन्होंने बहुत सारे गीतों की भी रचना की थी। एक विशेष सॉन्ग जो है नॉट देयर इन दिस बुक अनफॉर्चुनेटली, मैं कल एक किताब पढ़ रहा था उसमें था एक विशेष गीत उन्होंने स्वयं रचना किया जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और उस गीत में वो लिखते हैं कि अब गौरंग महाप्रभु नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन कैसे बनाए रखूंगा। श्री सचिनंदन गौर हरि के विरह में जब मैं उनके सुंदर केशों को नहीं देखूंगा तो मैं जीवन को कैसे बनाए रखूंगा। श्रीवास मंदिर में श्रीवास ठाकुर के आंगन में जब गौरंग महाप्रभु नहीं रहेंगे तो मेरे लिए कैसे जीवन संभव होगा। इस तरह से वो शची देवी और विष्णुप्रिया के फीलिंग्स को प्रकट करते हैं अपने भजन में। थोड़ा सा मैं श्यामानंद प्रभु के बारे में बोलना चाहूँगा। ये बहुत ही विशेष वैष्णव हैं। कुछ महाप्रभु के पार्षद हैं जो महाप्रभु के आने से पहले आए धरती पर, जैसे अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर पंडित। कुछ हैं जो महाप्रभु के साथ आए और कुछ हैं जो महाप्रभु के धरती की लीला खत्म होने के बाद आए, सेकेंड जनरेशन वैष्णव जो हैं। उनमें से ऐसे एक महान वैष्णव हैं श्री श्यामानंद प्रभु, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ये महाप्रभु के इंटरनल एसोसिएट्स में से एक है। जैसे राजा जब होता है तब उसके साथ उसके पार्षद होते हैं, कभी राजा अकेले नहीं होता। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी जब आते हैं उनसे पहले यदुवंश भोजवंश अंधक वंश में उनके पार्षद आते हैं, या ब्रज में नंद यशोदा आते हैं। ऐसे ही ये सब भी हालांकि महाप्रभु के बाद प्रकट हुए, लेकिन ये महाप्रभु के ही पार्षद माने जाते हैं। ये विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए धरती पर प्रकट हुए। श्यामानंद प्रभु का मुख्य इलाका जो प्रचार का वो उड़ीसा था। नरोत्तम दास ठाकुर विशेष करके बंगाल में प्रचार करते थे। ये बालक का जन्म चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ, जो कि वैष्णव के कैलेंडर के अनुसार कल था। और इनके पिताजी का नाम था श्री कृष्ण मंडल और इनकी माता का नाम था दूरिका। श्यामानंद प्रभु के जन्म होने से पहले उनके घर में बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुए थे, और जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उनके माता पिता बहुत दुखी थे, तो जन्म होने पर उन्होंने बालक का नाम रखा दुखी, उसका नाम दुखी था। और इस बालक के नामकरण संस्कार जब उसके जो हॉरोस्कोप जिसकी कुंडली देखी गई तो सबने बताया कि ये बहुत महान वैष्णव होंगे और ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, और कुछ ने बताया कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनको यहाँ पर लेकर आए अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। दिखने में बहुत सुंदर थे कामदेव की तरह, और जो भी कोई व्यक्ति उनके दर्शन भी करता उसके आंखों को और मन को बड़ा आनंद अनुभव होता है। कुछ समय बाद बच्चे का अन्न प्रशालन सेरेमनी हुआ, पहली बार बच्चे को भोजन दिया जाता, उसके चूड़ाकरण सेरेमनी, उसके बालों को कटाया जाता है। और जब उसके एजुकेशन विद्या शुरू हुई तो कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी सब ज्ञान को ग्रहण कर लिया, विशेष करके ग्रामर व्याकरण कविता और न्याय, ये उनके विशेष सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने बहुत जल्दी सीख दिए। उस गांव में जहाँ पर वे रहते थे बहुत सारे वैष्णव आकर गौर निताई की लीलाएं बताते थे, और श्यामानंद प्रभु का एक विशेष गुण था कि गौर निताई की लीला सुनने में बहुत आनंद लेते थे, और न केवल आनंद लेते थे वो दूसरों को भी बताते थे, उनका एक विशेष गुण था ये। कई बार वो गौर निताई की लीला को सुनने से उनके आंखों में आंसू आने लगते थे, एक्सटेसी में मग्न हो जाते थे। कृष्ण मंडल प्रभु जो उनके पिता थे वो भी स्वयं बहुत एडवांस भक्त थे, और उन्होंने अपने बालक को थोड़े बड़े होने पे कहा कि आपको अभी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने स्वयं की प्रेरणा से उसने बताया कि मैं हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षा लेना चाहता हूँ। हृदय चैतन्य अंबिका कालना में रहते थे। आप में से कई लोगों ने यह स्थान देखा होगा, शांतिपुर के पास नदी पार करके अंबिका कालना है, या आप अगर हावड़ा से रेलवे लाइन से जाते हैं तो रास्ते में अंबिका कालना स्टेशन आता है। यहाँ पर हृदय चैतन्य के गुरु गौरीदास पंडित का आश्रम था। गौरीदास पंडित जो हैं वो गौर निताई की सेवा करते थे। आपने सुना है कि एक बार उन्हें हृदय चैतन्य प्रभु उनके शिष्य थे, और जब गौरीदास पंडित कहीं बाहर गए तो हृदय चैतन्य ने एक बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया था गौर लीला के लिए, गौर पूर्णिमा के उत्सव पे। लेकिन जब उनके गुरु लौट के आए गौरीदास पंडित, तो उन्होंने बोला आपने मेरे अनुमति के बिना कैसे उत्सव मना लिया, कैसे उत्सव का आयोजन किया। उनके गुरु ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने डांटा हृदय चैतन्य को, बोला तुम चले जाओ। जब वो बाहर चले गए थोड़ी दूर पर वो कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, क्योंकि उनका कीर्तन इतना शुद्ध था कि गौर निताई ऑल्टर से दौड़ते हुए बाहर चले गए और उनके कीर्तन में डांस करने लगे। गौरीदास पंडित देख रहे हैं, अरे वो ऑल्टर खाली है। वो लकड़ी लेके दौड़े, उनके पीछे पीछे दौड़े उनको चेस करने के लिए, और भगवान दौड़ते हुए ऐसे बताया जाता है उनके हृदय में चले गए, हृदय चैतन्य के, तो इज कॉल्ड हृदय चैतन्य, लॉर्ड गौरंगा एंटर्ड हिज हार्ट। तो यही हृदय चैतन्य से मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, और क्योंकि गौर निताई हमेशा उनके घर में रहते हैं, मैं उनसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दो, आपका ब्लेसिंग्स दो, तो मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। पिताजी बोले कि आप जाओगे कैसे, वह स्थान काफ़ी दूर है। तो बोले कि बहुत से लोग आते रहते हैं और गंगा स्नान करने के लिए कई लोग जाते हैं बंगाल में, मैं भी जाऊँगा उड़ीसा से बंगाल। उनके पिताजी ने बहुत देर सोचा और अंत में अनुमति दी, गौर देश की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे वो नवद्वीप पहुँचे, नवद्वीप के बाद फिर वो शांतिपुर आए, और शांतिपुर के बाद फिर वो अंबिका कालना नाम के स्थान पर पहुँचे। उन्होंने लोकल लोगों से पूछा और पूछते पूछते वो गौरीदास पंडित के घर के पास पहुँचे, और गौरीदास पंडित के घर को देख के नम्रता के कारण वो अंदर नहीं गए, बाहर से उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उस महान वैष्णव के चरणों की वंदना करने लगे। तब हृदय चैतन्य प्रभु उस समय गुजर रहे थे और उन्हें पूछा कि आप कौन हो। तो ये प्रभु जी का पहले नाम था दुखी, श्यामानंद प्रभु का। दुखी प्रभु ने जवाब दिया कि मैं, मेरा नाम है दुखी और मेरा घर धरेंद्र बहादुरपुर नाम के गाँव में है। मैं आपके चरणों की वंदना करने के लिए आया हूँ। मेरे पिता का नाम है कृष्ण मंडल। हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए, वो कहने लगे कि आपका नाम आज से दुखी नहीं, आपका नाम होगा कृष्णदास, या कोई लोग बोलते हैं दुखी कृष्णदास। आज सवेरे से मुझे ऐसे लग रहा था, हृदय चैतन्य प्रभु कहने लगे कि आज मुझे लग रहा था कि कोई व्यक्ति मुझे मिलने आने वाला है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। और उन्होंने एक दिन सिलेक्ट किया, ऑस्पिशियस डे, और उस दिन दीक्षा प्रदान की। उन्होंने नोटिस किया कि उनका शिष्य बहुत बुद्धिमान है और बहुत पढ़ा लिखा भी है, तो और देखा उनके भक्ति में इतनी रुचि है, तो उन्होंने आदेश दिया कि आप वृंदावन जाओ और वहीं पर जीव गोस्वामी के आश्रम में आप ज्ञान ग्रहण करो। आप जीव गोस्वामी के आश्रम में जाओ और वहीं से ज्ञान ग्रहण करो और हरि भजन करो। तो कृष्णदास ने प्रणाम किया और वो निकल पड़े वृंदावन की ओर। अब ये भी एक बहुत लंबा रास्ता था, बंगाल से वृंदावन, उस समय में ट्रेन्स भी नहीं थे, वो चलते हुए गए। और जाते समय हृदय चैतन्य ने उनसे कहा कि आप वृंदावन के षड गोस्वामियों को मेरा प्रणाम देना। तो जाने के लिए दुखी कृष्णदास पहले नवद्वीप पहुँचे, और नवद्वीप में वो योगपीठ गए जहाँ पर जगन्नाथ मिश्र और शची माता का निवास स्थान पहले था। जगन्नाथ मिश्र शची माता धरती छोड़कर चले गए, सिर्फ ईशान ठाकुर प्रभु वहाँ थे। तो उन्होंने ईशान ठाकुर प्रभु को प्रणाम किया और ईशान ठाकुर ने उनको आशीर्वाद दिया। अगले दिन कुछ लोग नवद्वीप से वृंदावन तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, श्यामानंद प्रभु भी उनके साथ निकल पड़े। रास्ते में वो गया पहुंचे, गया में उन्होंने एक मंदिर देखा जिसका नाम है विष्णुपाद मंदिर। आप लोगों ने कहानी शायद सुनी होगी, विष्णुपाद मंदिर जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिले थे। तो वहाँ पर उन्होंने उस मंदिर के दर्शन किए और वहाँ से वो काशी गए। काशी में महाप्रभु के एक विशेष भक्त रहते थे जिनका नाम था तपन मिश्र। उन्होंने तपन मिश्र को प्रणाम किया, चंद्रशेखर और दूसरे भक्तों को प्रणाम किया, और उसके बाद फिर वो आगे उनका आशीर्वाद लेकर आगे निकले। अंत में मथुरा धाम में सबसे पहले वो विश्राम घाट में पहुँचे। ये वैदिक प्रथा है कि जब आप कोई ब्रजधाम में जाते हो तो पहले विश्राम घाट में स्नान करना चाहिए। आजकल ये संभव नहीं है, इसलिए लोग पहले फोगला आश्रम में स्नान करते हैं या जो भी प्रैक्टिकल है। लेकिन आइडियली शुड बिगिन परिक्रमा एट विश्राम घाट। विश्राम घाट जाने का रास्ता बहुत छोटा है और बसेस भी नहीं जा सकते, वहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, इसलिए लोग नहीं कर पाते। लेकिन आइडियली ये तरीका है, व्हेन यू एंटर ब्रज यू शुड गो टू विश्राम घाट। विश्राम घाट वो स्थान है कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करने के बाद वहाँ पर विश्राम किया था, तो विश्राम घाट कहते हैं। और वहीं पर भगवान वराहदेव धरती को ऊपर लेकर आए थे, उसके पास में ही मंदिर है जहाँ पर धरती ऊपर प्रकट हुई थी। फिर जब धरती को ऊपर ला रहे थे तब धरती ने देखा कि ये ऊपर कोई स्थान दिखा रहा है, दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर हरे भरे वृक्ष भी हैं। धरती माता सोच रही थी, उन्होंने वराहदेव से पूछा कि आप मुझे ऊपर ला रहे हैं, मेरे को राक्षस ने नीचे फेंक दिया था, लेकिन अब मेरे नीचे रहने पर भी ये ऊपर जगह दिखाई पड़ रही है, कौन सी जगह है, ये कैसे नष्ट नहीं हुआ? तब भगवान वराहदेव ने बताया कि ये मथुरा मंडल है, ब्रजमंडल। जब धरती का नाश भी हो जाता है, प्रलय भी हो जाता है, तो ये स्थान नष्ट नहीं होता। ये 3 स्थान है, जगन्नाथपुरी, श्री नवद्वीप धाम और श्री ब्रजधाम, ये शाश्वत है। अगर प्रलय हो या भूकंप हो या सुनामी आए, तो फिर इन 3 में से किसी एक स्थान का टिकट बुक करके रखें। दीज आर इटर्नल प्लेसेस, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी मटीरियल सिचुएशंस। विश्राम घाट में स्नान करने के बाद वो कृष्ण जन्म स्थान पर गए। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे वो लौटने लगे, वहाँ की धूल को स्वीकार करने लगे और वहाँ से वो वृंदावन गए। उनको कोई पता नहीं था कि जीव गोस्वामी कहाँ पर रहते हैं। वो पैदल चलते चलते पूछते पूछते वहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने जीव गोस्वामी को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े। उनसे उनसे उनको निवेदन करने लगे कि आप मुझे ज्ञान ग्रहण ज्ञान दीजिए। तब जीव गोस्वामी ने उनको स्वीकार किया श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के क्लासमेट के रूप में। और कृष्णदास यानी दुखी कृष्णदास जो बाद में श्यामानंद प्रभु हुए, उन्होंने अपने गुरुदेव जीव गोस्वामी से कहा कि आप मुझे कुछ सेवा भी दीजिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं या वैष्णव के पास जाते हैं तो न केवल ज्ञान ग्रहण करने के लिए, साथ साथ सेवा करने के लिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तो हमें सद्गुरु के पास जाकर नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए और साथ साथ सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सेवा भावना नहीं होती तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता। अगर आप सुन भी लें थियोरेटिकली, उसका रियलाइजेशन तब होता है जब हम सेवा भावना में होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी की सेवा की थी, छिप कर सेवा करते, दीक्षा नहीं ली थी तभी भी वो सेवा कर रहे थे। ये दिखा रहे थे कैसे एक आदर्श शिष्य को होना चाहिए। जीव गोस्वामी ने उनको सेवा दी कि आप रोज सेवा कुंज में झाड़ू लगाओ। नाइस सर्विस, सेवा इन सेवा कुंज। तो उस दिन से वे सेवा करने लगे बहुत खुशी के साथ। और कभी कभी वो सेवा करते तो जोर से पुकारते राधा गोविंद, ये हमारे लिए राधा कुंज बिहारी, राधा गोपीनाथ। इस तरह भगवान के नामों को पुकारते और कभी कभी उनकी लीलाओं को याद करते सेवा कुंज के धूल में लौटने लगते हैं। और कभी कभी वो झाड़ू को अपने सिर पे मारते थे कि ब्रज ब्रज की धूल का झाड़ू अपने सिर पे धारण करते। कभी कभी नहीं बहुत सारी ने। अंत में एक दिन क्या हुआ कि जब वो कुंज साफ कर रहे थे उनको एक नुपुर प्राप्त हुआ जो पैरों में डाले थे, एंकल ब्रेसलेट। तो उन्होंने उसको सिर पे स्पर्श किया और सोचने लगे कि मैं इसको अपने वस्त्र के कपड़े में थोड़ा बांध दिया, उस जमाने में पॉकेट्स नहीं होते थे, और उन्होंने सोचा जिसका भी है उसको मैं बाद में लौटा दूंगा। अगले दिन श्रीमती राधा रानी ने अपने गोपी सखियों को बताया कि कल रात को जब हम सेवा कुंज में लीला कर रहे थे तो मेरा नूपुर गिर पड़ा, आप में से कोई जाकर वो वापस लेकर आइए, जाकर ढूंढिए। दिस इज ब्रज अ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर वो नूपुर को ढूंढने के लिए गए और उन्होंने विशाखा देवी आई वहाँ पर, और विशाखा देवी ने पूछा कृष्णदास से कि आपको नूपुर मिला है? उसने बोला कि हाँ मुझे मिला है। एक्चुअली जब दुखी कृष्णदास ने देखा तो देख के इतने मोहित हो गए, कि साधारण स्त्री नहीं थी, गोपी थी। तो उन्होंने पूछा, मुझे मिला है कि तो पहले दुखी कृष्ण ने बोला, मुझे मिला है, लेकिन आप बताइए कि आप हो कौन। तो उसने बताया, मैं यहाँ पर गोपी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप रहते कहाँ हो? यही गांव में। तो ये नूपुर के आपका है? तो बोला, नहीं मेरा नहीं है, हमारे घर में एक नई वधू आई है, उसका है। तो तुम ये यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि देने से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए कि किसका है। उन्होंने बताया, कल वो यहाँ पर आए थे और फूल चुनने के लिए शायद गिर गया होगा। तो दुखी कृष्ण बोले, ठीक है, उनको बुला कर ले आप, ओनर को लेकर। जैसे कई बार होता है ना, पुलिस स्टेशन में कोई चीज़ चली जाती है तो व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी। अब उनको बुला कर ले आई। नहीं नहीं आप दे दो, मुझे दे दो। नहीं, मैं खाली ओनर को ही देता हूँ, मेरा पॉलिसी है। तो अगले दिन श्रीमती राधा रानी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु नंदिनी, कृष्ण प्रिया, श्यामा, वो स्वयं आते हैं और वो कृष्णदास को विशाखा जी बोलते हैं कि हे भक्त, जो नुपुर जिसका था वो यहाँ पर स्वयं आए हैं। और जब उन्होंने श्रीमती राधिका को देखा, उनके शरीर के दिव्य तेज को देखकर वो इतने प्रभावित हो गए, वो मेस्मराइज हो, एकदम मग्न हो गए देखते हुए। और उन्हें बड़े खुशी के साथ वो नूपुर अर्पण किया। तब श्रीमती राधा रानी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। राधा रानी की कृपा से उनको वहीं पर सेवा कुंज के पास राधा कुंड के दर्शन हुए और उन्होंने जो है वहां पर स्नान करके उनको विशेष गोपी का शरीर प्रदान किया। श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से उस नूपुर को लेकर उनके माथे के ऊपर एक विशेष तिलक लगाया और कहा कि आज से आपका नाम होगा श्यामा नंद। श्यामा जो है राधा रानी का नाम है, तो श्यामा नंद। श्रीमती राधा ठाकुरानी और सब सखी जो है वो सब अदृश्य हो गए और दुखी कृष्णदास का रूप फिर से साधारण तो नहीं, लेकिन गोपी का नहीं था, वो चेंज हो गया फिर से। और सब लोग पूछने लगे कि ये क्या घटना हुई, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं, सिर्फ जीव गोस्वामी को बताया, क्योंकि गुरु को तो सब बताना चाहिए। जीव गोस्वामी को सारी घटना बताई। जीव गोस्वामी बोले, ठीक है, किसी को बताना मत। तो ये समाचार सब जगह पर फैल गया कि दुखी कृष्णदास ने तिलक का स्टाइल बदली कर दिया है ना। कल समझो कि अगर कोई डिवोटी तिलक अलग स्टाइल में लगाता है तो सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नहीं, राधेश्याम प्रभु जी पूछेंगे, यू नो, वेयर इज दिस न्यू स्टाइल तिलक। अगर आपको इस्कॉन में रहना है तो एक विशेष स्टाइल है तिलक का। तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन ये समाचार अंबिका कालना तक पहुंच गया, उनके गुरु तक, हृदय चैतन्य तक। और वो उनको डांटने लगे, वो यहाँ पर आकर कहने लगे कि तुम क्यों इस तरीके से विम्सिकल बिहेवियर कर रहे हो, ये किसने आपको बताया, आपने अपना तिलक का स्टाइल बदली कर दिया। और वो बता भी नहीं सकते थे क्योंकि जीव गोस्वामी ने बोला है। ये इंटर गुरु कॉन्फ्लिक्ट जैसे हो गया थोड़ा। एक शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस समय भी होते थे। तो तब उनको डांटने लगे। तब अंत में हृदय चैतन्य को एक स्वप्न आया और सपने में राधा रानी स्वयं प्रकट हुई और राधा रानी उनके गुरु को डांटने लगी। राधा रानी बोलने के, मैंने उनको ये नाम दिया है, मैंने उनको ये तिलक दिया है, और अगर मैंने कुछ चेंज किया है तो उसमें आपका क्या कहना है, व्हाट इज योर ओपिनियन। हृदय चैतन्य नेक्स्ट डे ब्रजेश्वरी राधा रानी को स्वप्न में प्रणाम किया और नेक्स्ट डे श्यामानंद को लेकर उन्होंने गले लगाया प्रेम से, क्योंकि शिष्य पुत्र के समान होता, उसको गोद में बिठाया और बोले, आप बहुत भाग्यशाली, स्वयं श्रीमती राधा रानी कृपा प्राप्त की। जय जय श्री राधे। Should I tell more of this pastime or should I speak Balaram Leela? वॉट विल बी मोर प्लीजिंग टू राधे श्याम प्रभु. दे हैव आई एम ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग थ्रू दिस. देर आर सो मेनी डिटेल्स डिस्क्राइब्ड हियर अबाउट श्यामानंद पास टाइम. वुड दैट बी मोर प्लीजिंग टू कृष्णा एंड टू द वैष्णवस और Yesterday was Balaram Ras Yatra. Did you discuss that past time? So maybe I should speak that. That is more important. तो मैं बलराम लीला बोलना चाहूँगा 10-15 मिनट के लिए. लेकिन एक चीज़ और है श्यामानंद प्रभु के बारे में. श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये तीनों पुस्तक लेकर जाते हैं गोस्वामी के लिखे हुए और ब्रज से वो नवद्वीप की ओर निकलते हैं ऑफिस बनाने के लिए. और आप सब जानते हैं रास्ते में वो सब पुस्तक चुरा लिए जाते हैं राजा बिरंभीर द्वारा. और बाद में ये पुस्तक वापस मिल जाते हैं जब वो श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा स्वीकार करते हैं. तो उस समय श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु को बोलते हैं कि तुम उड़ीसा में जाके प्रचार करो, मैं पुस्तकों को खोज लूँगा. नरोत्तम दास ठाकुर से कहते हैं कि आप बंगाल में जाके प्रचार करो. तो श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में प्रीचिंग करते हैं और उनका प्रचार बहुत शक्तिशाली होता है. उनके प्रचार से गांव के गांव भक्त बन जाते हैं. एक बार उनके दर्शन करते ही श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उत्तम अधिकारी होता है, कनिष्ठ अधिकारी होता है कि जिसने कभी एक बार कृष्ण नाम लिया, मध्यम अधिकारी है जो हर समय बोल रहे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसको मध्यम अधिकारी बोलते. और उत्तम अधिकारी है जिसको देखते ही सब लोग कृष्ण नाम लेने लगे. श्यामानंद प्रभु इज ऑब्वियसली उत्तम अधिकारी, देयर इज नो डाउट. इज एक्चुअली वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण. तो पूरे उड़ीसा भक्त रहते. लेकिन एक मुसलमान राजा था जो बहुत बहुत क्रूर था और उसने कई लोगों को भेजा कीर्तन का विरोध करने के लिए. कई मुसलमान सैनिकों को भेजा. श्यामानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि विरोध हो रहे तो वो करताल लेकर ऊपर की ओर इशारा करने लगे. और जैसे उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया आकाश से बहुत सारे उल्के गिरने लगे, मिटियोर्स बर्निंग जलते हुए चिंगारी आने लगे और सब जो भी मुसलमान पठान जो विरोध कर रहे थे सबकी दाढ़ी जल गई. एक अच्छा तरीका है शेविंग करने के लिए. ऑल ऑफ देम देन दे नेवर प्रोटेस्टेड. श्यामानंद प्रभु का एक विशेष गुण जो बताने लायक है, उनके शिष्य बहुत पावरफुल थे, स्पेशली उनमें से एक रसिकानंद प्रभु. रसिकानंद प्रभु वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रीचर्स, बहुत पावरफुल थे. उन्होंने मुसलमान राजा और मुसलमान सैनिक सबको प्रचार किया, लेकिन विशेष करके एक हाथी को भी भक्त बनाया. एक पागल हाथी था और मुसलमान राजा ने कहा श्यामानंद रसिकानंद प्रभु को कि अगर आप इसको भक्त बना सकते हो तो हम मानेंगे कि आप सच्चे वैष्णव हो. और बाकी सब ने बताया कि आप मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है. लेकिन रसिकानंद प्रभु सोच रहे थे अगर मैं अपने गुरु के चरणों को याद कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या मुश्किल है. मुकम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरिम. गुरु के चरणों को याद करो क्या मुश्किल है. आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं है तो भी आप बोल सकते हैं, आप गूंगे हो तो भी बोल सकते हैं. साउंड सिस्टम छोड़ोगे जीभ भी नहीं है. दैट फेथ वी शुड हैव, दैट गुरुज मर्सी मेक्स अस स्पीक. गुरु की कृपा से ही मुकम करोति वा. तो गए और पूरा एक अखाड़ा जैसे भरा था, स्टेडियम जैसे, बीच में वो हाथी था और सब लोग देख रहे थे. और रसिकानंद प्रभु बीच में आए और हाथी पागल हाथी दौड़ते हुए आया. रसिकानंद प्रभु को देख के वह हाथी झुक गया, बस ऐसे झुक गया, जस्ट बाउड डाउन नीचे. और रसिकानंद प्रभु ने उनके कानों में उपदेश दिया कि जीवन का लक्ष्य है, हाथी जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना. उसके कान में मंत्र बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. और वो वैष्णव हो गए. उस दिन से वो वैष्णव हो गए, उसका नाम रखा गया या श्री गोपाल दास, इनिशिएटेड डिवोटी, डायरेक्ट इनिशिएशन, कान में इनिशिएशन, कितना फॉर्चुनेट। और तब से वो बहुत बहुत ही अच्छे वैष्णव हो गया। जब भी रसिकानंद प्रभु शहर में होते, गांव में होते, उनका संग लेता, और जब उनके गुरुदेव कहीं चले जाते तो वो तीर्थ यात्रा में जाता था। हमने समय वेस्ट नहीं करता। और इवन एक बार तो रसिकानंद प्रभु के कुछ शिष्य थे, यानी श्री गोपाल प्रभु के गुरु भाई हाथी भाई ने, मानव गुरु भाई तो उन्होंने एक बैग लिया और वो घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, और जो भी कुछ मिलता था, क्योंकि हाथी सामने है तो लोग भिक्षा देने में भी डरते थे, तो एक बैग रख देते थे और लोग अपने आप देते। ब्रज में भी ऐसे एक शेर था, बरसाना में, आपने सुना है कहानी, एक शेर था जो मोरकुटी के पास, शेर भयानक, अब शेर भयानक होते ही हैं लेकिन ये भयानक शेर था। लेकिन एक साधु वहाँ पे जप कर रहे थे, साधु जब शुद्ध भक्त जप करते हैं उनके जप के प्रभाव से सारे वैष्णव हो जाते, शुद्ध भक्त अगर कुछ बोले नहीं भी, शुद्ध भक्त जहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे श्वास लेते हैं, वहाँ पे सब भक्त बन जाते, 14 भुवन का उद्धार हो जाता है एक शुद्ध वैष्णव से। कल शुद्ध कीर्ति, दंडवत प्रभु नट से, शुद्ध कीर्ति प्रभु एक बार बता रहे थे, उनकी किताब है व्हाट इज़ द डिफिकल्टी, उसमें कि एक बार श्री प्रभुपाद जी प्लेन में जा रहे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु साथ में थे, और प्रभुपाद जी को अचानक कुछ प्रसाद लेने की इच्छा हुई, डिवोटीज के पास कुछ था नहीं, कुछ पफ्ड राइस थे, चिरमुरा या मुरी बोलते हैं जिसको, तो श्री प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा ग्रहण किया और शुद्ध कीर्ति प्रभु के हाथ में वो बैग था जिसमें और चिरमुरा बचा था, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा ही लिया था, और एक एयर होस्टेस जो जो एयरप्लेन में जो जिनकी सेवा होती है, तो बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे उसने हाथ डाला उसमें और प्रभुपाद जी के रेमनेंट्स ले लिए। पता नहीं कैसे उसको, कोई वैष्णव उसको पता नहीं था कि महाप्रसाद देने से क्या होता है या कुछ, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से वो ग्रहण किया। और बाद में थोड़ी देर बाद वो आई और उसने कहा कि आपको कुछ, जो जनरली जो प्लेन में जो भोजन देते हैं वो अच्छा नहीं होता और वैष्णव नहीं लेते जनरली, तो उन्होंने पूछा तो तब आपको कुछ चाहिए, तो श्री प्रभुपाद जी के उन्होंने कुछ फ्रूट्स और कुछ या कुछ दूध का अरेंजमेंट किया। ये कहानी मैंने पहले सुनी थी, लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु और एक कहानी बता रहे थे कि कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यही स्त्री कई वर्षों के बाद एक स्थान पर, उन्होंने एक प्रीचिंग प्रोग्राम में उनको देखा और वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे। उस समय उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था और कोई प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं किया था, लेकिन जस्ट प्रभुपाद जी के रेमनेंट्स लेने का फल था कि वो भी भगवान का नाम लेने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर दीज थिंग्स, वैष्णव के रेमनेंट्स, वैष्णव के चरणों की धूली और वैष्णव के उच्चिष्ट, आई मीन चरणों, वैष्णव के चरणों के धोए जल। तो बलराम जी की रस यात्रा थी, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। ये लीला राम घाट के पास हुई, ये स्थान बहुत ही सुंदर है और ब्रज के पवित्र स्थानों में से बहुत फेमस है। कृष्ण बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए और कई वर्षों तक लौट कर नहीं आए। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण के बिना अपने देह को बनाए रखना बहुत मुश्किल था। बस एक ही कारण था वो अपने देह को बनाए रख रहे थे, और वो था ये आशा कि कृष्ण लौट कर आएंगे, कृष्ण लौट कर आएंगे। बस इसी विचार में वो अपनी चेतना को बनाए रखते थे कि कृष्ण लौट कर आएंगे। लेकिन जब रात तक कृष्ण लौट कर नहीं आते तो ये आशा करते कि कल कृष्ण लौट कर आएंगे। रोज गोपियां फूल चुनकर लेकर आते और मालाएं बनाकर इंतजार करते कि कृष्ण लौट कर आएंगे। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे भक्त की भावना होती है वैसी भगवान की भावना होती है। भगवान भी हमेशा गोपियों के विरह में रहते, रात को नींद में भी गोपियों के नाम लेते और द्वारका की रानियों से कहते कि मेरा वास्तविक प्रेम ब्रज से है, मेरा प्रेम गोपियों से है, मैं आपको इसलिए विवाह किया जिससे आप मुझे गोपियों का याद दिला सके, गोपियों को सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी दिखने में भी कृष्ण जैसे थे और कृष्ण ने अपने स्वयं के पोशाक भी उनको प्रदान किए। उद्धव जी गए गोपियों को सांत्वना देने के लिए, लेकिन वास्तविक कारण था कि भगवान कृष्ण उद्धव जी को और ऊंचे भक्ति का उपदेश करना चाहते थे गोपियों के द्वारा। जब उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम की महिमा को देखा तो वो स्तब्ध रह गए और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे गोपियों के चरणों की धूल मिले। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं ब्रज में एक घास के तिनके के रूप में जन्म लूं, और उनकी इच्छा पूरी हुई। गोवर्धन के पास एक स्थान है जहाँ पर उद्धव जी एक गुल्मलता के रूप में प्रकट हुए। उद्धव जी के लौटने के कुछ वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने बलराम जी को भेजा, और बलराम जी जब आए तब नंद और यशोदा इतने प्रसन्न हुए कि हमारे पुत्र इतने समय बाद आए। कि हालांकि बलराम जी उस समय इतने बड़े हो गए थे, उन्होंने कई असुरों को मारा था, उनकी उम्र जरूर 50-60 साल से ऊपर रही होगी उस समय, लेकिन नंद और यशोदा ने बलराम जी को अपनी गोद में बिठाया और उनके सिर को सूंघने लगे। उनके आंखों से ऐसे अश्रु प्रवाह होने लगे जिससे उन्होंने अपने बलराम जी को स्नान कराया और उनसे पूछने लगे कि कृष्ण कैसे हैं। और गोपियां फिर पूछने लगे कि कृष्ण और आप ब्रज छोड़कर चले गए, आप बहुत चालाक हो, हमने अपना सब कुछ आपके लिए अर्पण कर दिया, लेकिन जब अक्रूर जी आए तब आप हमें छोड़कर चले गए। अब मथुरा की स्त्रियां जो हैं वो तो हमारी तरह सरल नहीं हैं, हमको आपने धोखा दे दिया है। इस तरह से बहुत सारे व्यंग के शब्द बोले। और बाद में पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, बलराम जी सब गोपियों की प्रसन्नता के लिए रासलीला करते हैं, और रासलीला के दौरान उनकी इच्छा होती है यमुना जी में स्नान करने की। जनरली जब व्यक्ति को स्नान करना होता है तो व्यक्ति नदी के पास जाता है, लेकिन बलराम जी ने आदेश दिया नदी को मेरे पास आओ। इवन कृष्ण भी स्नान करने यमुना में जाते हैं, लेकिन बलराम जी बड़े भैया हैं तो यमुना जी को पास में बुलाते हैं। और यमुना जी सोचते हैं, क्योंकि एक्चुअली उससे पहले और एक घटना हुई थी कि वारुणी, वरुण की पुत्री वारुणी जो है वो एक लिक्विड बेवरेज के रूप में, एक 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 नशीले पदार्थ के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन ये नशा बहुत अच्छा नशा होता है, ये इस दुनिया के नशे की तरह नहीं होता। और बलराम जी इसको इसका पान करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं वो हमें वारुणी प्रदान कर रहे हैं, और ये वारुणी ये इंटॉक्सिकेंट है, लेकिन इंटॉक्सिकेंट बहुत अच्छा है, हरि नाम नशा नित्यानंद प्रभु हमें प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नशीला पदार्थ बहुत अच्छा भी है, इसकी कोई फीस भी नहीं है और कोई परमिट की भी जरूरत नहीं, एवरीबॉडी कैन ड्रिंक दिस नेक्ट। तो बलराम जी नशे में थे, ट्रांसेंडेंटल नशा, ये मटेरियल इंटॉक्सिकेशन नहीं जो कि ब्रेन को इफेक्ट करता है। इस नशे के कारण यमुना जी सोच रहे थे कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, और तब बलराम जी बहुत क्रोधित हुए। यू रेचेड रिवर, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में, यू रेचेड रिवर, हे क्रूर नदी, तुम मेरी आज्ञा पालन नहीं करते, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बलराम जी के पास दो अस्त्र हैं, एक उनकी गदा और दूसरा हल। बलराम जी अपने हल से यमुना के ऊपर प्रहार किया और उसकी अनेक शाखाएं हो गई। यमुना देवी स्वयं साक्षात प्रकट हुई हाथ जोड़ के क्षमा मांगने के लिए, हे बलराम जी आप तो भगवान हो, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाई थी। और इस तरीके से बलराम जी बड़े प्रसन्नता के साथ स्नान करते हैं। आज भी आप ब्रज में जाओगे इस स्थान पे, तब देखोगे यमुना के कई अलग अलग शाखाएं हो गए हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं। बलराम जी स्नान करने के बाद जब लौटते हैं तो स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए नीले रंग के वस्त्र लेकर आते हैं, और साथ में उनको आभूषण भी प्रदान करते हैं। तो ये लीला बताती है कि कैसे बलराम जी की आज्ञा पालन करनी चाहिए। का मतलब हमारे लिए गुरु की आज्ञा है, श्री प्रभुपाद की आज्ञा पालन करनी चाहिए, नहीं तो फिर माया रूपी हल का प्रभाव होगा फिर। वी शुड बी वेरी केयरफुल टू बिकम ओबीडियंट। ऑलवेज फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट डिवोटीज एंड चैंट द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक और फेस्टिवल था, वो है कृष्ण वसंत रास। कृष्ण की अलग अलग लीलाएं होते हैं, एक होती है जो शरद ऋतु में लीला होती है जो बंसीवट में हुई थी, लेकिन एक वसंत, अभी वसंत की शुरुआत है, वसंत में जो लीला होती है वो चंद्र सरोवर के पास होती है। आपने देखा है गोवर्धन के पास एक स्थान है चंद्र सरोवर, पैथा के पास, गोवर्धन से करीब 2-4 किलोमीटर है। जो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं वो 21 किलोमीटर की है, उसमें ये नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा एक और बड़ी परिक्रमा है 28 किलोमीटर की, तो उसमें चंद्र सरोवर आते हैं, और वहाँ पर जब कृष्ण लीला करते हैं तो चंद्रमा अपनी पूरी किरणों के साथ उनकी लीलाओं को सहायता करते हैं, ये वसंत रस है। और उधर ये स्थान है पैठा, जहाँ पर एक बार भगवान कृष्ण रासलीला से अप्रकट हो गए, और गोपियाँ ढूंढते ढूंढते गए और देखा कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ आ रहे हैं तो कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया, और गोपियों ने पूछा ये कृष्ण कहाँ पर हैं, और कृष्ण ने जवाब दिया, कृष्ण उस तरफ गए, अपने हाथों से इशारा किया। लेकिन जब श्रीमती राधारानी स्वयं आए तो कृष्ण अपने दो हाथों को नहीं रख सके, और वो श्याम सुंदर द्विभुज 200 फॉर्म को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये लीला भी कल के दिन हुई थी। जब हम हरे कृष्णा मंत्र शुद्ध रूप से जप करेंगे दास दासानुदास के रूप में, तो ये सारी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकट होंगी। श्रील प्रभुपाद की कृपा से रास लीला पूरे न केवल वृंदावन में हो रही है, पूरे दुनिया में हो रही है। जहाँ भी डिवोटीज एकत्रित होते हैं, जहाँ पर भी भक्त एकत्रित होते हैं और हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो स्थान रासस्थली है, वो स्थान वृंदावन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स हैं वृंदावन। इस तरह से हम हमेशा कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? राधेश्याम प्रभु, एनी कॉमेंट्स? वृंदावन प्रभु वुड लाइक टू से सम। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। एनी क्वेश्चंस और कॉमेंट्स? श्री प्रभुपाद की जय।